मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 6 सितंबर 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्यारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथी दोस्तों, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं शंकर लाल जाट, आप टोंक राजस्थान से हैं, और विवेक सिंह, आप ललितपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो शंकर और विवेक, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इस स्वागत के बाद मैं सच में अभिभूत हूं आप सब के द्वारा दिए गए सम्मान से। आप सबने जो जुड़ाव व्यक्त किया है, और इनफैक्ट मेरे कहने का मतलब है टीचर्स डे पर जो आप लोगों की इतनी सारी शुभकामनाएं, यूं मैं कहूं कि अच्छी भावनाएं जो मुझे प्राप्त हुई हैं। मित्रों, जब मेरे पास मेल का यूं कहूं कि बंडल आया तो मैं चौंक गया। मैंने कहा कि क्या बात हो गई, आज इतना मोटा मेल। मोटा मेल का मतलब है कितने पृष्ठ उसमें थे। मित्रों, ये बम्पर क्रॉपिंग थी, और सच पूछे तो एक दिन में इतने मेल आज तक मेरे पास नहीं आए। तो मित्रों, यह आप लोगों की जो सद्भावना मेरे प्रति है, जो स्नेह है, जो सम्मान का भाव है, या यूं कहूं कि आभार का भाव है, यह उसका प्रमाण है। और इससे पहले कि मैं AIR न्यूज पर आऊं, मैं आप लोगों की उन भावनाओं का बहुत ही तहे दिल से सम्मान करते हुए बहुत बहुत उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, अब आज के लाइफ मैनेजमेंट को मैं आज इसी धन्यवाद और आभार का जो भाव हमारे अंदर है वह क्या है, इसी पर रखूंगा, जिसे हम न्यूज़पेपर्स के बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस आभार प्रदर्शन के बाद अब मैं आता हूं कल की AIR न्यूज पर। मित्रों, दो तीन अच्छी और बड़ी खबरें हैं, उसमें से एक खबर की थोड़ी सी मैं विस्तार के साथ चर्चा करना चाहूंगा, और खासकर वो G20 की खबर को लेकर है। फ्रेंड्स, G20 के बारे में जो बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए उसको लेकर मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। मैंने जो सबसे बड़ी बात आपसे जो बताई थी, जो जिसे आप मूलभूत बात कह लें, बड़ी बात भी न कहें, उसकी बेसिक्स थी, वो ये है कि ये एक इकोनॉमिक फोरम है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों का एक कंबाइंड फोरम है, मंच है। और इसमें जो वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, याद रखिए जो इकोनॉमिक्स के इश्यू हैं, वर्ल्ड फाइनेंशियल इश्यूज, अर्थव्यवस्था के इश्यूज, उनको लेकर बातचीत की जाती है। ये इसका मेन आधार है, मेन मुद्दा है, ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए, जिसमें 20 देश हैं। मित्रों, अब आपने देखा कि चीन में जो शिखर सम्मेलन हो रहा था, चीन के शहर हांगजो, अब दोस्तों इसके उच्चारण बड़े अलग अलग होते हैं, इंग्लिश में मैं एक बार आपको उसके उसकी जो स्पेलिंग है वो सुना देता हूं, HANGZHOU ये शहर है, वहां ये शिखर सम्मेलन हुआ। याद रखिए कि शिखर सम्मेलन का मतलब ही होता है बिल्कुल अपेक्स लेवल का सम्मेलन, जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, तब इससे उच्च स्तरीय सम्मेलन तो कोई हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, वो सम्मेलन समाप्त हो गया है, और उसको लेकर के आज टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी एडिटोरियल कमेंट्स हैं, और डेफिनेटली दूसरे अखबारों में भी एडिटोरियल कमेंट्स इस पर निश्चित रूप से आएंगे। उसी के कुछ पॉइंट्स को लेकर के मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन था, और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्री एग्जाम हो या मेन एग्जाम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भारत का जो पक्ष रखा उस जी शिखर सम्मेलन में, यूं कह लीजिए कि भारत की जो उपलब्धि रही है, थोड़ा समय आपका ध्यान उधर ले जाना चाहूंगा, क्योंकि जो समीक्षात्मक अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हो सकता है कि उसमें भारत की उपलब्धियों के बारे में क्या अचीवमेंट रहा भारत का, उस पर कुछ संकेत उसमें हो। मित्रों, देखा आपने कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, जो दो बातें वो बहुत अच्छे तरीके से रख पाए और जिसे पूरी दुनिया ने न केवल सुना ही बल्कि सराहा भी, मैं स्पेशली अंडरलाइन कर रहा हूं सराहा भी, सुनेंगे तो है ही, जो भी आए हुए हैं उनको तो सुनना ही है, लेकिन उसको एप्रिसिएट भी किया। मित्रों, एक तो ये कि भारत न्यूज में भी था, आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साउथ एशिया का एक देश है, नाम नहीं लिया उन्होंने, इशारा बिल्कुल साफ है, जो पाकिस्तान को जो आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है, आतंकवाद को फंड्स दे रहा है, और इसे रोका जाना चाहिए और सभी देशों को मिलकर के ऐसे देशों का विरोध करना चाहिए जो इस तरीके से आतंकवादी संगठनों की मदद कर रहे हैं, आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं। तो भारत एक तरीके से यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान की जो आतंकवादी संरक्षण नीति है स्पेशली भारत के खिलाफ, उसको विश्व फोरम पर लाने में सफल रहा है, इसे हम भारत की एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात रही है मित्रों, कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत आतंकवाद से ही अपनी बात को जोड़ते हुए बड़े खूबसूरत तरीके से ये बात कही कि जो काला धन है, आप देखते हैं कि काला धन के लिए कुछ हैवन कंट्रीज बने हुए हैं जहां कोई भी काला धन भेज सकता है, फिर आप उसकी जांच नहीं कर सकते, उसके बारे में पता नहीं कर सकते। और दूसरा जो टैक्स इवेजन है, जो कर की चोरी होती है, इन्हें रोकने के लिए मिलकर कोशिश करनी चाहिए। मतलब उन्होंने तीन चीजें एक साथ, या यूं कह लीजिए कि आर्थिक अपराध और आतंकवाद, इन दोनों को बड़ी खूबसूरती के साथ जोड़ा और कहा कि इसके लिए किसी भी देश के पास कोई संरक्षण नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। आप देख रहे हैं कि हमारा देश खुद ही, खासकर काले धन में जो समस्या है वो आप देख रहे हैं, टैक्स की जो समस्या है वो आप देख रहे हैं, साथ ही जो दूसरे देश हैं जिन्हें हम टैक्स हेवन कंट्रीज कहते हैं, उनके कारण जो हमारे जैसे देशों में जो प्रॉब्लम आ रही है आप उसके बारे में जानते हैं, वह मैं खासकर उसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहूंगा। यूं कह लीजिए कि जो आतंकवाद की उन्होंने बात कही वो तो कही ही, लेकिन सबसे ज्यादा जोर उनका वित्तीय प्रशासन पर था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर था, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर था। और आपने देखा कि न्यूज में इस शब्द का प्रयोग भी किया गया है, वित्तीय प्रशासन, ये शब्द आपको मालूम रहना चाहिए। तो आपने देखा कि भले ही प्रधानमंत्री जी ने क्लाइमेट की भी बात उठाई, उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर आपके पास ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उद्योगों की नई तकनीकी है जिससे कम से कम प्रदूषण होता है, तो ये टेक्नोलॉजी भी जो डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनको आप सस्ते में प्रोवाइड कीजिए, तभी विश्व का कल्याण हो सकता है, अदरवाइज वो कैसे करेंगे जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। मित्रों, एक तो ये पक्ष है जो भारत की एक तरीके से उपलब्धि रही है, मैं कहना चाहूंगा, आगे हम देखते हैं कि और क्या निकल कर सामने आता है। इसका जो दूसरा पक्ष रहा है वो थोड़ा सा चिंतित करने वाला पक्ष है, जो चाइना ने रखा। उसने कहा कि दुनिया के देशों को अपने यहां से जो संरक्षणवादी नीति है, जो प्रोटेक्शनिज्म, इसको खत्म करना चाहिए, इसको अस्वीकार करना चाहिए। ये चाइना ने रखा, देशों ने स्वीकार भी किया, नो डाउट, क्योंकि स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है। मित्रों, यहां मैं संरक्षणवाद पर आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा और इसकी बेसिक्स के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारी जो उदारीकरण की नीति है जिसके हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, या न्यू इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी जो सिचुएशन बन रही है उसके केंद्र में क्या है, चूंकि उसके केंद्र में संरक्षणवाद की का रिजेक्शन ही है, उसको खत्म किया जाना है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए मित्रों, संरक्षणवाद क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है, संरक्षण देना। किसको संरक्षण देना? आर्थिक स्थितियों को संरक्षण देना। जब आप आर्थिक स्थितियों को संरक्षण की बात करते हैं तब फिर क्या आता है, सीधी सी बात है कि उद्योगों को संरक्षण देना। जैसे एक पौधा होता है, देखिए जब वो छोटा है तो आप उसे प्रोटेक्ट करते हैं, बाड़ा लगाते हैं, रोजाना उसमें पानी डालते हैं, खाद कुछ कुछ दिनों में देते हैं, निंदाई गुड़ाई करते हैं, कम से कम तब तक तो करते हैं जब तक कि वो थोड़ा सा पेड़ जैसा नहीं बन जाता, और इसके बाद आप छोड़ देते हैं, आप उसको उसी की ताकत पर छोड़ देते हैं, फिर उसे हमारे संरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें खुद में इतनी ताकत आ गई है, मजबूत हो गया है, उसे कोई बकरी आकर के चर नहीं पाएगी, उसे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बैल उधर से गुजरेगा और उसे कुचलकर नष्ट कर देगा, क्योंकि अब वो मजबूत हो गया है। कुल मिलाकर के पेड़ की जगह आप अर्थव्यवस्था को रख दीजिए, उद्योगों को रख दीजिए, बात आपकी समझ में आ जाएगी। यानी कि हमारे जो उद्योग है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसको भी संरक्षण की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, एंड हु विल प्रोवाइड दिस प्रोटेक्शन, यह प्रोटेक्शन कौन उपलब्ध कराएगा, बट नेचुरल है सरकार, जो सरकार होगी वो संरक्षण देगी। अब सवाल यह कि सरकार किस रूप में संरक्षण देगी। देखिए मित्रों, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो देश आजाद हुए हैं, आपको मालूम है कि वो सब डेवलपिंग कंट्री है, ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री है, चूंकि ये सब उपनिवेशवाद के शिकार थे, यूरोपीय देशों ने इन पर शासन किया, तो इनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी, यहां उद्योग नहीं लगे थे, यहां टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हमारे यहां बड़े बड़े बाजार तो थे और बाहर से सामान बन करके आता था, हमारे यहां सामान नहीं होता था, नहीं बनाया जाता था, मतलब हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बिल्कुल जीरो लेवल पर, थोड़े बहुत थे लेकिन ऑलमोस्ट जीरो लेवल पर थे। अब जब हम आजाद हुए तो स्वाभाविक है कि हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि हम उन यूरोपीय देशों का मुकाबला कर सकें औद्योगिकीकरण की दृष्टि से, मशीनीकरण की दृष्टि से, जिनके यहां 100 साल पहले ये चीज हो चुकी है, हम इतने ताकतवर नहीं हुए थे। तो हमारे उद्योगों को संरक्षण की जरूरत थी, यानी कि ऐसी आर्थिक नीतियों की जरूरत थी जहां हम प्रतिस्पर्धा में न डाल दिए जाएं, मतलब ऐसा न हो कि हमको शुरू से ही बाहरी उद्योगों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़े। तो सरकार ने कुछ नीतियां बनाई, वो नीतियां क्या हो सकती हैं मित्रों, बहुत आप समझ सकते हैं, जैसे कुछ नीतियां ऐसी हो सकती होंगी कि अगर किसी क्षेत्र में एक उद्योग लगाया जा, एक चीज का उद्योग लगाया जा रहा है, तो उस क्षेत्र में उसी वस्तु के उत्पादन करने वाला दूसरा उद्योग न लगाया जाए ताकि इसको कड़ी स्पर्धा न करनी पड़े, ठीक है, इस तरह से संरक्षण दे दिया गया। संरक्षण का जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है दोस्तों, वो ये है कि बाहर से अगर कोई सामान हमारे देश में आएगा तो हम उस पर हैवी ड्यूटी लगाएंगे, जिससे आप कह लीजिए कि एक बहुत भारी आयात कर, और आयात कर उसमें ज्यादा लगाकर हम अपने यहां जो चीजें उत्पादित हो रही हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ये संरक्षणवाद का दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने यहां स्टील बना रहे हैं, राइट, उस स्टील की कीमत मान लीजिए कि 10,000 रुपए टन है ना, मैं सामान्य 10,000 रुपए टन है, लेकिन हमारे यहां अगर चाइना का स्टील आने लगे तो वह स्टील यहां मार्केट में 8,000 रुपए टन में सेल होगा, बिक्री होगी। तो सवाल है कि जब चाइना का स्टील 8,000 रुपए में हमारे यहां आकर बिकेगा तो भारत का 10,000 रुपए का स्टील कौन खरीदेगा? तो सीधी सी बात है कि चाइना से स्टील आएगा और भारत के जो इस्पात उद्योग होंगे उनको नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। तो अब भारत क्या करेगा, क्योंकि हमें अपने उद्योगों को संरक्षण देना है, क्योंकि देखिए हमारे अपने उद्योगों का विकास होना केवल ये नहीं कि हमारे लोगों को चीजें थोड़ी सी सस्ती में मिल जाएंगी, उसके बहुत से हिस्से होते हैं दोस्तों। हमारे यहां उद्योग लगेंगे तो हमारे यहां उतने लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार तो सबसे बड़ी चीज है। चीन से आ रहा है स्टील तो हमें क्या मिल रहा है, केवल एक सस्ते में थोड़ा सा स्टील ही तो मिल रहा है, हमारे लोगों के रोजगार का क्या होगा? हमारे यहां स्टील का उत्पादन होगा तो उससे रिलेटेड जो कच्चा माल है हम उसका उपयोग कर सकेंगे, कच्चे माल में हम वैल्यू एडिशन कर सकेंगे। यहां स्टील उत्पादन होगा तो उससे सरकार को टैक्स मिलेगा, तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा तो सरकार उस पैसे का उपयोग हमारे देश के विकास के लिए करेगी, चाहे वो सड़कें बनवाए, चाहे वो स्कूल अस्पताल बनवाए, जो कुछ भी करे, तभी तो कोई कंट्री डेवलप कर सकता है ना। ऐसा इस तरह से हम डेवलप नहीं कर सकते कि हम कंज्यूमर को सस्ते में चीजें प्रोवाइड कर दें और सोचें कि हमारा देश विकास कर गया, ऐसा तो संभव नहीं है। तो सरकार करेगी ये कि जो चाइना से 8,000 रुपए का स्टील आ रहा है उस पर इतना टैक्स लगा देगी कि वह स्टील अगर इंडियन मार्केट में बिकता भी है तो 11,000 रुपए से कम में ना बिके, मतलब 10,000 रुपए से तो ज्यादा में ही वो बिकेगा, इतना उस पर टैक्स लगा दो। तो मान लीजिए कि उस पर उसने 30% टैक्स लगा दिया, तो 8,000 का 30% कितना हो गया, 2400 रुपए, ठीक है, 8,000 रुपए प्लस 2400 रुपए, तो 10,400 रुपए का वो स्टील हो गया, तो हमारे यहां का 10,000 रुपए का स्टील बिकता रहेगा। तो मित्रों ये संरक्षणवादी नीति थी। अब आप देखिए कि जब आप टैक्सेस इस तरीके से लगाने लगेंगे तो रास्ता आपने बंद कर दिया। उदारीकरण को समझिए, उदारीकरण का मतलब क्या है कि आपने अपने यहां के दरवाजे खोल दिए, किस चीज के दरवाजे, बाजार के दरवाजे खोल दिए, ताकि दुनिया का मार्केट एक हो जाए, मतलब दुनिया का कोई भी बाजार आपके बाजार से जुड़ जाए। तो इसकी पहली शर्त क्या होगी कि आप टैक्सेस कम करेंगे, टैक्सेस कम करेंगे। आप देखिए कि जब आप उदारीकरण को पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि आप टैक्सेस कम करेंगे, इसीलिए आप देखिए कि जब भी टैक्स कोई देश बढ़ाता है तो कैसे हड़बड़ी मचने लगती है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो साइन भारत ने भी किया, उसका मेंबर है भारत भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व के व्यापार को एक तरीके से नियंत्रित कर रहा है, तो वहां कुछ शर्तें हमें माननी पड़ती है और उसमें फिर हमने शर्त, जो भी देश होगा, जो भी उसका मेंबर होगा, जिसने भी साइन किए हैं, वो शर्त मानेगा कि हम इतने परसेंट से ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ा सकते। ये उदारीकरण हो गया, बहुत ही सिंपल से उदारीकरण हो गया। लेकिन मित्रों अब क्या हो रहा है कि पिछले 25 सालों के उदारीकरण के बाद अब कुछ देशों में छटपटाहट पैदा हो रही है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इससे उनको जितना फायदा होना है उतना फायदा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन अलग हो गया, दूसरे देशों में भी अब बेचैनी फैल रही है, क्योंकि उनके अपने उनको उनके रोजगार नहीं बढ़े, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं, धनी और धनी होते चले जा रहे हैं, कुछ ही लोग के हाथों में देश की जो संपत्ति है वो केंद्रित होती चली जा रही है। इस तरह के रिपोर्ट आपको बीच बीच में पढ़ने को मिलेंगे। तो अब देश धीरे धीरे फिर से संरक्षणवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत ने भी आपने देखा कि FDI के लिए ओपन कर दिया ना, डिफेंस में भी आप आ जाइए, आप विमान सेवा में भी आ जाइए, आप फलाने, देख रहे ना कि आप, तो संरक्षणवाद का एक ये भी मुद्दा होता है कि हम उद्योगों को केवल भारतीयों के लिए संरक्षित करेंगे, विदेशी आकर के यहां उद्योग नहीं खोल सकते, लेकिन हम धीरे धीरे विदेशियों के लिए भी अपने क्षेत्रों को खोल रहे हैं। तो ये सारे के सारे उदारीकरण के तत्व हैं, या यूं कह लीजिए कि संरक्षणवाद के विरुद्ध है। तो अगर संरक्षणवाद के धरने पर फिर से देश आने लगे तो इस उदारीकरण का क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमी का क्या होगा, तो उसके प्रति चिंता व्यक्त की गई है। और चीन ने तो स्वाभाविक रूप से चिंता व्यक्त, क्योंकि चीन अभी दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, दुनिया के बाजार जो है चीन के सामान से पटे पड़े हैं, तो अगर हम संरक्षणवाद की नीति अपनाएंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो चीन को होगा। इसीलिए चीन ने ये बात रखी और चीन को सबसे ज्यादा छटपटाहट है। आज तो उसकी जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा एक तरीके से निर्यात पर ही निर्भर हो गई है। तो मित्रों ये मैंने आपको संरक्षणवाद को समझाने की कोशिश की है, बहुत ही ले मैन की भाषा में, बहुत ही जनरल स्टडीज की स्टाइल में, मैं अर्थशास्त्र की स्टाइल से आपको ये नहीं बता रहा हूं, है ना। अब आप इसी संदर्भ को ध्यान में रख करके टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं एडिटोरियल कमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इसको पढ़िएगा तो देखिएगा आपको फटाफट सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और मित्रों इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि इसमें जो प्रस्ताव पारित हुए हैं चार पांच चीजों पर इन्होंने, मतलब G20 की सफलता रही है, पहला तो ये है कि यस इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, एक संतुलित अर्थव्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलप होना चाहिए, धारणीय विकास यानी कि पर्यावरण और इन सब के साथ उसका संतुलन बैठना चाहिए, और इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब किसी भी देश में ऐसा नहीं कि एक वर्ग विशेष का तो विकास हो रहा है और बाकी लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये एक तरह से G20 के निर्णय हैं जो बड़े सिंपल से हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा। मित्रों जो दो तीन जो छोटी छोटी खबरें हैं उनके विश्लेषण की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो देखा आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये बात कही है कि यदि कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा सके। देखिए डेमोक्रेसी तो है ही यही है ना, डेमोक्रेसी में अगर सरकार की आलोचना करने का अधिकार छीन लिया जाएगा तो वो तो कम्युनिस्ट कंट्री ही कह लीजिए एक तरीके से हो गए। डेमोक्रेसी तो असहमति के बीच सहमति बनाने की ही कला है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आप देखेंगे कि वाक की अभिव्यक्ति, और इस बार राजद्रोह के मुकदमे कुछ ज्यादा चर्चा में है। आपने देखा है कि अभी तमिलनाडु की शायद एक एमपी थी, उन्होंने कह दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान नर्क नहीं है, तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा चल गया। कुछ इस तरीके से स्थितियां हो रही हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है कि राजद्रोह से संबंधित जो धारा है उसको आप देखें समझें। और इस पर मैं इससे पहले आपको लोगों को एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड भी कर चुका हूं। इसके बाद एक छोटी सी खबर थी मित्रों, ये तो पहले से ही है, न्यूज में अभी शामिल की गई थी कि डॉक्टर उर्जित आर पटेल जो हैं वो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर बन गए हैं राजन जी की जगह पर, और 3 साल तक वो गवर्नर रहेंगे। और एक जो खबर थी लास्ट में कि सरकार एक पर्यटन नीति बना रही है और कुछ दिनों में ही वो पर्यटन नीति सामने आ जाएगी, तो मित्रों जैसे ही ये पर्यटन नीति बन जाए आप इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और हमारी जितनी क्षमता है उसका कुछ भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो छोटे छोटे देश इस पर्यटन में इतनी अर्निंग कर रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था का केंद्र ही बन गया है। हाँ, हम सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि सेवा के क्षेत्र में अब हमारा जो योगदान है 54.7% या 55% तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका है हमारी अर्थव्यवस्था में, जो एक बहुत बड़ी बात है। पिछले 3 सालों में इस क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ तरक्की हुई है, तो ये पर्यटन क्षेत्र भी जो है ना काफी कुछ सर्विस सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। काफी कुछ क्या मतलब, ज्यादातर मामलों में वो सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा है। ठीक है, होटल बनेंगे तो वो मैन्युफैक्चर में क्या कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, लेकिन ज्यादातर उसका भाग सर्विस सेक्टर से जुड़ा है। तो मित्रों ये थी AIR न्यूज की खबरें। जहां तक न्यूज़पेपर्स का सवाल है, जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल कमेंट थे मित्रों G20 को लेकर के, वो मैं आपको बता चुका हूं। बाकी 2-3 छोटे छोटे और एक एडिटोरियल कमेंट और आर्टिकल्स हैं, उन्हें आप देख लेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें आप पढ़ लेंगे। मित्रों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर जो लाइफ मैनेजमेंट का है, ईमेल से ठीक पहले। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप लोगों से जो बहुत ही भावुकता से भरे हुए जो मैसेज मुझे मिले हैं टीचर्स डे पर, नो डाउट इन सबको पढ़ने के बाद मैं रोमांचित हूं, बहुत ज्यादा ऊर्जास्वित भी हूं, ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहा हूं, और नो डाउट कि कहीं न कहीं अपने को और भी ज्यादा जिम्मेदार भी। जिम्मेदारी इसलिए मित्रों कि जब कुछ इस तरह की भावनाएं सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, लोगों का सम्मान मिलता है, तो लगता है कि एक चुनौती के रूप में कि कैसे इस सम्मान को बनाए रखा जाए, कैसे इस स्नेह को मेंटेन किया जाए, कहीं कुछ ऐसा न हो जाए कि इसमें कमी आ जाए। क्योंकि सच पूछिए तो जिंदगी में हम अंत में जो पाना चाहते हैं वो यही है जो आप लोग दे रहे हैं, यही हो रह जाता है, बाकी फिर पाने को कुछ ऐसा नहीं रह जाता, और जो करने को रह जाता है उसके पीछे यही भावना काम करती है। तो मित्रों एक बार फिर से मैं इसके लिए आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इसके साथ ही साथ मैं एक बात आप लोगों से और शेयर करना चाहूंगा, और वही मेरे आज के लाइफ मैनेजमेंट का मूल सब्जेक्ट भी है। मित्रों वह यह कि हमारी जिंदगी में जिन लोगों का भी रोल होता है, और आप जानते हैं कि इस रोल की शुरुआत मां से हो जाती है, माता पिता परिवार के सदस्य रिश्तेदार हमारे पड़ोसी गांव शहर के लोग समाज टीचर्स पता नहीं कितने कितने लोग, फिर हम जैसे जैसे जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं कारवा बढ़ता चला जाता है बनता चला जाता है। आप पाएंगे कि अगर कभी भी इत्मीनान से सोचें तो उन सब का कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी जिंदगी में रहता ही है, बल्कि मैं तो यहां तक मानता हूं कि जो हमारे विरोधी रहे हैं जो हमारी आलोचना करते हैं यहां तक कि जिन्होंने हमें धोखा दिया है उनका भी बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में होता है, क्योंकि गड्ढे ही हमें बताते हैं कि कहां संभल कर चलना चाहिए, है ना। अगर एक बार कहीं आपको गड्ढे में आपका पैर पड़ गया और पैर में मोच आ गई तो आप देखेंगे कि उसने आपको सीख दे दी है कि देख कर चलो, ए भाई जरा बच के चलो, तो वो उनका भी कम योगदान हमारे जीवन में नहीं होता, और हमारी जिंदगी इन्हीं सब चीजों से बनती है। दोस्तों तो मुझे लगता है कि अब हम उनका ऋण चुकाएं कैसे, कैसे उनसे उऋण हों। उनसे उऋण होने का तरीका यह नहीं होता है कि हम उनकी कीमत दे दें, क्योंकि कीमत तो फिर दुकानदारी हो गई, वो तो फिर बिजनेस हो गई, और जिन चीजों की जो चीजें ऐसी कीमत देने से मिलती हैं वो बिना कीमत के मिलती भी नहीं है। वहां हम आभार व्यक्त करके कोई चीज नहीं ले आ सकते। गए और 5 किलो आटे का पैकेट उठा लिया और कहे कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं कि आपका ये 5 किलो का आटा का पैकेट मैं ले जा रहा हूं। ऐसा नहीं होता जीवन में। लेकिन ऐसी अदृश्य चीजें, भौतिक चीजें नहीं, अदृश्य चीजें, जिनका रोल कहीं ना कहीं हमारी भौतिक चीजों से कई गुना ज्यादा होता है, मित्रों हर क्षण हमें कोई ना कोई देता रहता है, कहीं ना कहीं से हमें मिलती रहती है। और उनका, उनसे उऋण होने का एकमात्र जो तरीका है वो यही है कि हम उन्हें धन्यवाद दें, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करें। पता नहीं क्यों मुझे बहुत शर्म आती है मित्रों, खासकर अपने आप पर। मैं इस मामले में बहुत कंजूस था, मैं इसको स्वीकार करता हूं और सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं। शायद मेरी कंजूसी का कारण ये नहीं था कि मैं किसी की प्रशंसा करने से खुश नहीं होता था या मुझे ईर्ष्या होती थी, बल्कि मेरे उस कंजूसी का कारण था मेरा अपना संकोच। मैं बहुत बहुत ज्यादा संकोची किस्म का लड़का रहा हूं। लड़का इसलिए कह रहा हूं कि उस उम्र की बात कर रहा हूं, ये तो कॉलेज जाने के बाद जब पढ़ाना पड़ा तब संकोच धीरे 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 कम हुआ मित्रों, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और अब मेरी कोशिश होती है कि जहां भी मौका मिले मैं दूसरे को धन्यवाद दूं, दूसरे की प्रशंसा करूं और उसके प्रति आभार व्यक्त करूं। और नो डाउट इस मामले में जो मेरी टीचर रही हैं वो मेरी पत्नी रही हैं, जिन्होंने धीरे धीरे टोक टोक कर, बता बता कर, समझा समझा कर, सतर्क कर करके मुझे इस लायक बनाया है या ये आदत मेरे अंदर डाल दी है। और मैं चाहता हूं कि ईश्वर करे कि ये आदत लगातार बढ़ती चली जाए। लेकिन हाँ, वो जो प्रशंसा हो, जो आभार हो, जो धन्यवाद हो, वो जेन्यून हो, मतलब उसके पीछे सत्य की ताकत होनी चाहिए, उसके पीछे साइकोफेंसी नहीं होनी चाहिए, चापलूसी नहीं होनी चाहिए। मित्रों जब मैं सबसे पहली बार विदेश गया, मुझे या तो पहली बार या दूसरी बार, तो मुझे सेसेल्स की अभी एक घटना याद आ रही है। सेसेल्स अफ्रीका में एक बहुत ही छोटी सी जगह है, टापू जैसा है, आइलैंड समुद्र के किनारे। वहां हम लोग शाम को पहुंचे थे, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था, होटल में सामान वगैरह सब रख करके। और सुबह जब हम लोग घूमने टहलने निकले कुछ दोस्तों के साथ में कि चलो टहला जाए, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है, प्राकृतिक सौंदर्य है, तो मुझे एक बहुत विचित्र, इतना आश्चर्य हुआ कि वहां इतने सारे विदेशी वहां पर्यटन के लिए जाते हैं, वो निकल रहे हैं और हम लोगों को देखकर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू, मतलब वो इस तरीके से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, मुस्कुरा के कर रहे हैं और खुशी के साथ कर रहे हैं, जैसे कि हमारे परिचित हो। तो दोस्तों शुरू में तो मैं चौंक गया, ईमानदारी से बताऊं कि मैं एकदम चौंक गया कि यार ये क्या कहीं मेरा परिचित तो नहीं है, अगर है तो ये कहां से आया, क्योंकि दिमाग तो हमारा उसी तरीके से चलता है। लेकिन मित्रों बहुत जल्दी समझ में आ गए कि नहीं, ये इनके कल्चर का हिस्सा है, ये इनकी संस्कृति का हिस्सा है, ये इनके मैनर्स का हिस्सा है। और तब समझ में आया कि सच में अगर हमें अपने आसपास खुशी का वातावरण रचना है, अगर हमें अपने आसपास रचनात्मकता पैदा करनी है, अगर हमें अपने आसपास ऊर्जावान क्षेत्र बनाना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को खुश रखिए और दूसरों के मन को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। और सच पूछे तो जब हम दूसरे की तारीफ करते हैं, दूसरे को धन्यवाद देते हैं, दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो इनफैक्ट हमारा खुद का भी मन खुश होता है और सुनकर सामने वाले का मन खुश तो होता ही होता है और आसपास एक ऊर्जावान प्रकाशवान क्षेत्र की रचना हो जाती है। मित्रों आप लोगों को भी विदेश जाने का मौका मिलेगा, आजकल विदेश जाना कोई बड़ी चीज नहीं रह गई, वहां आप देखेंगे। अभी कुछ महीने पहले जब मेरा बेटा और बहू इधर फ्रांस और इटली वगैरह होकर के आए, तो उन्होंने आते साथ ही एक सवाल किया था कि पापा समझ में नहीं आता कि वहां के लोग इतने खुश कैसे रहते, इतने खुश मिजाज कैसे हैं। बहुत विचित्र सी बात आपको लगेगी, जबकि उनके यहां का जो जीवन दर्शन है वो जीवन दर्शन शरीरवादी है। अगर उस तरीके से हम देखें तो आत्मवादी नहीं, हमारा जीवन दर्शन आत्मवादी है, शरीरवादी नहीं है। हमारे जो दर्शन की उत्पत्ति हुई है वो आनंद से हुई है और उनकी जो दर्शन की उत्पत्ति हुई है वो विषाद से हुई। जैसे ईसा मसीह को आप देखिए सूली पर चढ़ाया गया ना, तो उसी ने उनको भगवान बनाया, तो आप ईसा मसीह जी का चेहरा कभी भी आप हंसता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि अब वो सूली के दर्द से ही ये बात अलग है कि उन्होंने अपना ये त्याग मानव सेवा के लिए किया है, मानव हित के लिए किया है, और यही उनकी फिलॉसफी है, उनका कॉन्सेप्ट है। जो गलत नहीं है। तो हमारे यहां आनंद से जो दर्शन पैदा हुआ, जो पूरा का पूरा जीवन आनंद पूर्ण माना गया, हम इतना क्यों मुंह लटकाए रहते हैं, हम क्यों दूसरों की तारीफ करने में कंजूसी करते हैं? ये तो बाद में मेरी समझ में आया दोस्तों, इसलिए मैं आपको भी समझा रहा हूं। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्यों नहीं हम हर छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं, हर छोटी छोटी चीजों की तारीफ करते हैं? ये बात अलग है कि जब कुछ चीज ठीक नहीं होती तो हम आलोचना कर देते हैं, हम नाराजगी व्यक्त कर देते हैं। घर में 50 तरह की घटनाएं रोज घटती हैं। मां ने खाना बनाया है, बहन ने खाना बनाया है, पत्नी ने खाना बनाया है, नमक ज्यादा पड़ गया, तो उस दिन हम बता देंगे कि आज नमक ज्यादा है, आज तो खाना अच्छा नहीं बना। लेकिन जिस दिन अच्छा बना, क्या हम उस दिन तारीफ करते हैं? ज्यादातर अच्छा ही बनता है तो हम मान लेते हैं कि यार रोज अच्छा बनता है तो क्या रोज तारीफ करना। दोस्तों जैसे ऊर्जा की रोज जरूरत पड़ती है, मुझे लगता है कि ये प्रशंसाओं के ऊर्जाओं के टुकड़ों की भी रोज जरूरत पड़ती है। सूरज की हमें रोज जरूरत होती है, हवा की, सांस की हर पल जरूरत होती है, हमारी नस, हमारी जो पल्स हैं चलती रहे इसकी हमेशा जरूरत होती है, और दिल धड़कता रहे ये हमेशा जरूरत रहती है। ठीक उसी तरह से ऊर्जा के कणों की भी, प्रकाश के कणों की भी हमें हमेशा जरूरत होती है। मित्रों कोशिश कीजिए कि जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी मौका मिलता है, टॉर्च की इस रोशनी को फेंक दीजिए, दिखा दीजिए, बटन को दबा दीजिए, ताकि सामने वाले का मन, चाहे वो अंधेरे से जूझ रहा हो, चाहे वो निराशा में फंसा हुआ हो, एक बार वहां प्रकाश फैल जाए। आप करके देखिए, आपको इसका जादुई चमत्कार मिलेगा। किसी भी चीज की प्रशंसा कर सकते हैं, उसके काम की प्रशंसा कर सकते हैं, उसके ड्रेस की प्रशंसा कर सकते हैं, उसके ज्ञान की प्रशंसा कर सकते हैं। किसी भी चीज की प्रशंसा करने की कोई सीमा थोड़ी ही है, एक ही सीमा है, वो ये है कि आप सीमातीत हो जाइए। हम अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं, इसलिए प्रशंसा करने की सीमाएं हमने बना ली हैं। जिस दिन आप अपनी सीमाओं को तोड़ देंगे, आपके सामने घटित होने वाली हर घटना में आपको प्रशंसा की संभावनाएं नजर आने लगेंगी। मित्रों आप लोगों ने मेरे प्रति आभार व्यक्त करके, धन्यवाद व्यक्त करके, मुझे शुभकामनाएं देके अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे मेरी प्रशंसा ही की है। एक बार मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले को बनाए रखिए, केवल 5 सितंबर तक सीमित मत रखिए, और न ही केवल मुझ तक सीमित रखिए, इसको फैलाइए फैलाइए और फैलाइए, ताकि पूरा देश, पूरी दुनिया प्रकाश, प्रशंसाओं के प्रकाश से भर सके, और हर लटका हुआ चेहरा, निराश चेहरा, आपको बिल्कुल कड़क चेहरा दिखाई दे, जैसे कि कोई फूल की डाली एकदम पानी का की नमी को पाकर के और खिल उठी हो, तन उठी हो, और चारों ओर रोशनियों के टुकड़े जुगनों की तरह जगमगाने लगे हो। मित्रों मुझे लगता है कि ये संकल्प आप लोग लीजिए, इसलिए नहीं कि इससे दूसरे को अच्छा लगेगा, बल्कि इसलिए सच पूछिए तो आपको उनसे कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। दोस्तों सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा गणपति सिंह डावर का, जो भाबरा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और नायब तहसीलदार हैं। उन्होंने एक मेल के द्वारा मुझे सूचित किया है कि वो अपने जहां वो रह रहे हैं अभी डावर में, भाबरा में, उन्होंने गणित और अंग्रेजी की 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू की है। तो डावर जी मैं इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, और इनफैक्ट सच पूछिए तो अपने सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा करता हूं। झांसी से, झांसी उत्तर प्रदेश के झांसी से प्रभाकर श्रीवास्तव जो हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने शिक्षक दिवस पर एक पोयम लिखकर भेजी है। एक पोयम मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंग्लिश में ही उन्होंने लिखी है। तो प्रभाकर आपकी पोयम ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। आपकी इन भावनाओं का सम्मान करते हुए आपके प्रति भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। तो मित्रों बहुत से मेल आए हैं, उनमें से कुछ नाम मैंने छांटे हैं। अगर मैं उनके सबके नाम लेने लगूं तो मान करके चलिए कि आज आधा ऑडियो सिर्फ उनके नाम के उच्चारण लेने में ही पूरा वक्त खत्म हो जाता। तो मित्रों मैं क्षमा चाहते हुए कि उन सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही कुछ लोगों के नाम ले रहा हूं। अमित कुमार गिरिडीह झारखंड से, स्वाता शर्मा, उत्कर्ष दीप पटना से, अपूर्वा यादव, देवीलाल सूरतगढ़ राजस्थान से, अतुल नागरगोजे पुणे महाराष्ट्र से, शिवदयाल भोपाल से, स्नेहा, अभय मिश्रा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, साहिल कृष्ण जम्मू से, सुरेश कुमार, विकास खाड़िया जयपुर से, गौरव कुमार, संगीता चौधरी जयपुर से, तेरेसा अलेक्जेंडर, सीमा कुमारी दिल्ली से, दर्पण भारद्वाज आगरा से, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, शालिनी पांडे लखनऊ से और रजिया इकबाल इलाहाबाद से, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त किया जाता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।